संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में भी वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मुनियों के 28 मूल गुणों की चर्चा चल रही है, इसमें 21 हुए, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रियों की विजय और 6 आवश्यक। अब शेष 7 गुणों की चर्चा करना है, जिनके बारे में छड़ाला की ये पंक्तियां हैं, जिनके न नौन न दंत धोवन लेस अंबर आवरण भूमाही पिछली रयन में कछु सयन कासन करन। जिनके न नौन नहाते नहीं है, न दंत धोवन दातुन नहीं करते। अब आज के जगत को तो बहुत अटपटा लगेगा कि इसमें काय का धर्म है, ये धर्म में नहीं नहाने की और दांत नहीं धोने की शर्त की आवश्यकता क्या है? और कुछ लोग तो कहते हैं ये प्रैक्टिकल संभव कैसे है, ये तो घिनापना है, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? जगत को ऐसा लगता है ना, वो नहाते नहीं है का मतलब ये है कि वो यदि मान लो कि वे जंगल में हैं, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, और भयंकर जल की बरसात हो जाएगी तो क्या करेंगे? उनके पास क्या उपाय है बोलिए? कहीं छिपने की जगह तो उनका घर तो है ही नहीं, और कहीं हुए भी दूर तो किसी के दूसरे घर में तो जाते ही नहीं, बिना पूछे वे जा भी नहीं सकते हैं। और तीसरे बात यह है कि फिर उसमें दौड़ के जाएं ये संभव ही नहीं है, उन्हें तो ईरिया समिति पूर्वक चलना है, और बरसात में तो और सावधानी रखना है, बल्कि एक जगह उठ खड़े हो जाना पड़ेगा। तो शरीर पे से वो पानी गिर गया, उसका नाम स्नान नहीं हो गया। स्नान वास्तव में एक श्रृंगार का प्रतीक है, ख्याल में है ना? तो वो श्रृंगार उनके नहीं होता है। दूसरी ये बात है कि ये सब क्रियाएं ऐसी हैं कि जो साधनों की अपेक्षा रखती हैं। माने अब नहाना है तो पानी चाहिए, अब पानी है तो वो छना हुआ चाहिए, तो पानी के लिए चाहिए तो छना हुआ चाहिए, तो फिर बाल्टी वगैरह चाहिए, नदी वगैरह के पानी से काम नहीं चलेगा ना, फिर बाल्टी वगैरह चाहिए, फिर छन्ना चाहिए, फिर वो प्रासुक पानी चाहिए, तो फिर अग्नि हो, फिर उसे गर्म करें, तो फिर और ग्रस्तों की पराधीनता बढ़ेगी, क्योंकि खुद तो ये सब त्याग कर चुके हैं वो। तो एक दो रोटियां पेट में डालने थी, उसको तो आप समझ लो अब्बाद के रूप में किसी तरह हमने मान लिया। अब हम ये कहेंगे कि हम आ जाकर के आपके घर में नहाएंगे भी, क्यों, और बाथरूम भी जाएंगे, तो फिर ये कैसे चलेगा? माने वो नहाना भी एक आरंभ का कार्य है, हैं? वो भी सुविधाओं की अपेक्षा रखता है, और वे सुविधाएं जुटाने के चक्कर में भी पड़ना नहीं चाहते हैं। कोई पानी ऊपर गिर गया शरीर में उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि ये है कि जो स्नान की जो सुविधाएं हैं वे उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। तीसरे लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो जब 3 दिन से 2 दिन में नहीं नहाए तो हम तो बहुत घबराहट होने लगती है, तो उनको कैसे होता होगा? तो ये बात नहीं है। आप भी यदि नंगे बदन रहे ना तो शायद आपको नहाने की आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी, क्योंकि जो नेचुरल हवा निरंतर आपके शरीर से लगती रहती है उसमें आपका स्नान होता ही रहता है। आपने बंध अधिकार तो पढ़ा है ना समय सार का, उसमें आप देखे धूल आकर के तन शरीर पर चेंटती क्यों नहीं है? कितना ही व्यायाम करे शस्त्रादिक से लेकिन धूल नहीं चेंटती है, क्यों? कि जब तक शरीर पर चिकनाई नहीं हो तब तक धूल नहीं चेंटती है। अंदर में उनके राग द्वेष की चिकनाई नहीं है, शरीर में तो कोई तेल आदि का मर्दन थोड़ी करते हैं वे, जो आगे धूल चेंटेगी, आगे थोड़ी बहुत चेंट भी आ भी जाएगी तो हवा आएगी तो उसमें उड़ जाएगी। तो उनका नेचुरल रूप से शरीर ऐसा रहता है कि मेल छुटाने मेल लगता ही नहीं, मेल लगेगा कैसे, वैसे तो शरीर मेल का ही बना हुआ है, सारा शरीर ही मेल है, लेकिन आप नहीं देखते हैं ये चिड़िया हैं, ये कुछ नहीं इनका नहीं है ऐसा, कोई नहाने का गाय भैंस को तुम्हें नहाने का दातुन दातुन करने का तो किसी का है ही नहीं, लेकिन इनके कहाँ कोई दांत गंदे दिखाई देते हैं और कहाँ इनके शरीर गंदे दिखाई देते हैं, कैसे चमचमाते बढ़िया दिखते हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो जीवन ऐसा नहीं, नहाना कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके बिना जीवन नहीं चले, ये तो एक लग्जरी का अंश है, ये तो एक श्रृंगार का सूचक है जो उनके त्याग है, वो कोई शारीरिक आवश्यकता का प्रतीक नहीं है। लाखों जीव ऐसे हैं कि जिनके पास नहाने की सुविधा नहीं है, ख्याल में आए ना, नहाते नहीं हैं, जीव की बात कर रहा हूं मैं, अकेले मनुष्यों की बात नहीं कर रहा हूं, मनुष्य भी बहुत से हैं लेकिन जीव तो है ही है ना, तो बहुत अच्छी तरह से उनका जीवन चलता है। और जीवन तो हमारे हम संतों का भी देखते हैं ना, उन्हें कहां बाधा दिखाई देती है, कैसा वो दांतों में तो मैल जम ही जाता होगा ना, उसको तो सफाई करने की जरूरत है ही ना, जिनकी आंतें गंदी होती हैं उनके दांत गंदे होते हैं, दिन में 3-3 दफे भी कोलगेट से साफ करें तो भी मुंह से बदबू मारेगी और गंदगी आती है, और जिसकी आंत बिल्कुल ठीक होती है, पेट में गड़बड़ी नहीं हो, तो उनके बिल्कुल मुंह भी बिल्कुल साफ रहता है। आपने कभी देखा होगा जब बीमार आप हो जाते हैं तो जबान एकदम सफेद सफेद गंदी हो जाती है, आप कितनी साफ करो वो साफ नहीं होती है, जब बीमारी खत्म हो जाती है तो एकदम लाल हो जाती, बढ़िया साफ हो जाती है, वो कोई बाहर का मैल नहीं चेटा है, वो तो अंदर का आया हुआ मैल है। खैर अब जो भी हो, तकलीफ भी होती हो, जो भी होता हो, लेकिन नियम से उनके यहां स्नान और दंत धोवन नहीं होता, क्योंकि वो भी फिर अपेक्षा रखता है, फिर नीम की दातुन लाओगे, बमूल की लाओगे, ब्रश लाओगे, कोलगेट लाओ, फिर हर ये चीजें जो हैं ये सब बाह्य सामग्री की अपेक्षा से रखने वाली हैं, और वे एक निरपेक्ष हो गए, एक दफे सामग्री कोई दे भी दे तो रखें कहां, और रखें तो रक्षा कैसे करें। ये जो किताबें ना छोटे लगी छोटी सी, मैं रोजीना यहां रख जाता हूं, इन किताबों के बीच में जमा के रखता हूं कि जिससे कोई ले ना जाए, ले गया ले गया, 3-4 दिन लेंगे तो नई नई लानी पड़ती है क्या। तो महाराज यदि कोई ऐसी चीजें रखेंगे और जिन्हें कोई साधन नहीं, ये तो अपने हॉल के अंदर है, इतने आदमी हैं, सुरक्षा के साधन है, किवाड़ लगते हैं, तो वहां जंगल में बैठे होंगे क्यों, तो क्या होगा, बंदर ही उठा ले जाएगा तो क्या करेगा। मैंने ऐसा लगता है कि इतने में क्या, इसमें क्या धर्म हो गया, इसमें इसके त्यागने में क्या धर्म हो गया, इसे त्यागने में क्या धर्म हो गया, तो त्याग कहाँ है, उनके तो ग्रहण नहीं है, क्योंकि ग्रहण में जो आकुलता है, जो सुरक्षा की व्यवस्था है, ख्याल में है ना, वो आज के लोगों की समझ में इसलिए नहीं आती है कि जब बाकी की और सारी सुरक्षाएं विद्यमान रहती हैं तो उन्हें लगता है इसमें क्या दिक्कत है, इतना परिग्रह के साथ चलता है, अब एक दातुन की क्या कौन सी समस्या है, फिर जंगल के तो काट दिए, अब एक दातुन की कौन सी समस्या है, चल है ना। लेकिन जो वो वास्तविक मुनि के स्वरूप को समझते हैं और जो वास्तविक उन मुनिराजों के दर्शन जिन्होंने महाभाग्य से किए हैं, उनको ये बात बहुत बड़ी आफत दिखाई देती है। क्या थोड़ी सी भी, छोटी सी भी चीज वो कितनी बोझा मालूम पड़ती है, शिखर जी की यात्रा पे जाओ जब मालूम पड़ेगा कि चलो तो 2 किलो 1 किलो नाश्ता ले लो साथ में और पानी ले लो प्यास लगेगी, तो वो 1 किलो पानी ले जाना कितना भारी पड़ता है तुम्हें, वो तो जाने तो पेट पी के जाना भारी पड़ता है। पुराने जमाने में लोग उपवास करके जाते थे शंकर जी की यात्रा करने, क्यों? क्योंकि पर्वत पर वो मलमूत्र क्षेपण नहीं करना चाहते थे, पेशाब नहीं करना चाहते थे। यदि कुछ कर लेके जाएंगे तो वहां आएगी, और आज तो वही ले जाके खाते हैं सब। हर टोंक पर जाकर के वहां बैठे आराम के वो दो लड्डू खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, नहीं तो वो जल मंदिर है, वो तो है ही इसके लिए। क्यों? मेरे कहने का अर्थ है कि वो जो सब जो चीजें हैं बाहर की, वो कितनी अपेक्षा रखती हैं, और ये खुद अपने हर चीज अपने हाथ से लेनी पड़े तो ये मालूम पड़ जाए। क्या वे मुनिराज हैं, उनके एक पीछे कमंडल है और एक आध किताब है, अपने कैसे 10 किताबें रख लें तो शास्त्र ज्ञान का अध्ययन उसमें क्या तकलीफ है। तो एक हाथ में पीछी, एक हाथ में कमंडल, और तीसरा हाथ कहां है जो किताबें ले। लेकिन हमारी समझ में ये बात इसलिए नहीं आ सकती है कि लेने वाले तो बहुत आएंगे पीछे है। क्या फिर लेने की समस्या कहां है? हमें ये समझ में नहीं आती है, और मेरी ये समझ में नहीं आती है, शास्त्रकारों की ये समझ में नहीं आती है कि भाई ये इतनी चीज ले कैसे। मैं जाता हूं महाराजों के पास, सबने साहित्य ले जाता हूं, तो 90% लोग ऐसे ही कहते हैं कि पंडित जी बहुत अच्छी किताब है, हमने देखी है आपके, लेकिन हम कहां रखेंगे। तो मैं उनसे यही कहता हूं, 100 दफे ये वचन मैंने दोहराया होगा उनके कहने पर कि महाराज आपको तो जब तक यहां हो पढ़ना, नहीं तो छोड़ देना, कोई भी हो मोक्ष दे देना उसको जिसकी रुचि हो, और कोई नहीं मिले तो छोड़ देना जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा। आपको जब तक पढ़ना है आपको इसका बोझा लाद के यहां वहां ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल संभव नहीं है ना। तो इसलिए अपन को जो ये लगता है कि इन छोटी छोटी चीजों में क्या बांध दिया दिगंबर संतों ने, दातुन नहीं करें कल ली दातुन तो क्या फर्क पड़ता है, एक लोटा पानी ऊपर डाल दिया तो क्या फर्क पड़ता है। क्यों क्या फर्क पड़ता है का सवाल नहीं है। फिर उसके लिए वो बराबर एक तौलिया चाहिए पहुंचने को, फिर एक आदमी तौलिया लेके खड़ा है तो फिर पहुंच लिया आंग उस तौलिया से, तो फिर वो ऐसा करेगा, लेने वाला चाहिए, फिर उसे धो के संभाल के रखने वाला चाहिए, फिर दूसरे दिन जब फिर जरा करे तो फिर लाने वाला चाहिए। एक जरा सी बात में कितना होता है तुम्हें पता नहीं है, एक गृहस्थी में रहने वालों को पता चलता भी नहीं है। बाप दादू ने जुटा दिए ना सारी सामग्री, है ना, कुछ पति पत्नी पति पत्नी को जुटा देता है, पत्नियां संभाल संभाल के पति को जुटा के देती रहती हैं, तो उन्हें लगता है इसमें कुछ करने का है क्या, क्या इन्हें कुछ करने का है क्या। लेकिन ये सारी चीजें खुद ऐसा करो करना पड़े कि बिल्कुल बिना मकान के रहो अजित बाबू, और बिना उसके रहो बिल्कुल ऐसे ही, एक लंगोटी लगाए रहना, और जंगल में जाकर के 4 दिन रह के तो देखो तो मालूम पड़ेगा कि इसमें कितनी असुविधा है। हर चीज अपने हाथ से ही रखनी, अपने हाथ से ही धो के ले जानी है, फिर हम कम से कम परिग्रह में अपना जीवन चलाने की आदत वाले हो जाएंगे। कहीं कुली नहीं मिले रेलवे स्टेशन पर, तो सारा सामान आपको अपने हाथ से उठा के रखना पड़े, तो सब लोग जितना अभी सामान ले जाते हैं उससे 1/4 भी नहीं ले जाएंगे। और अभी तो ये भी रख लो, अभी देख लो इतने कपड़े, 3 जोड़ जोती और जूते और नालू क्या क्या रख लो, क्यों? अपने बाप का तो कुछ क्या करना है, यहां आएगा कुली को पैसा फेंकेंगे वो उठाएगा रख देगा, वहां से उठाएगा ये रख देगा, ये रख देगा, बस कर जोड़ते जाते। तो जब भी दूसरों की पराधीनता रंजमात रखना ही नहीं चाहते हैं तो ऐसा जीवन नहीं रखेंगे तो ये निष्परग्रही जीवन नहीं हो सकता। और परिग्रह काय का होता है, इन्हीं चीजों का तो परिग्रह होता है, जोड़ता है ना, एक एक चीज से एक एक आवश्यकता जुड़ती चली जाती है। क्यों? तो इनके न नौन न दंत धोवन लेस अंबर आवरण, अरे एक सूत के बराबर भी कपड़ा नहीं रखते, इतना लगा लेस अंबर आवरण, अंबर का आवरण लेस मात्र भी नहीं है। उसकी तो कोई सीमा नहीं है। इधर टूटे तो हमारे ही एक संप्रदाय ने कुछ 14-14 का उपकरण रख लिए, तो 14 में काम चल जाता है क्या? वे भी कम पड़ते हैं, है ना। यहां तो 3 ही उपकरण की बात रह गई, बस पृथ्वी कमंडल और पुस्तक। रंच मात्र भी कपड़ा नहीं रखना, ऐसे पूर्ण नग्न दिगंबर दशा। ये 27-28 मूल गुणों में एक मूल गुण ये भी है, वस्त्र का त्याग, वस्त्र नहीं होना बिल्कुल भी, है ना। भूमाहि पिछली रयन में कछु सहन एकासन करन, और पृथ्वी पर रात्रि के पिछले पहर में कछु थोड़ा सा सहन और एक आसन से करते हैं। देखो अभी रात्रि में एक आसन करते होंगे, गजब हो गया। हम क्या समझते हैं एक आसन माने? उस दिन में जो एक दफे खाना खाते हैं ना अष्टमी चतुर्दशी को कभी कभी, तो उसे क्या बोलते हैं? आज हमने एक आसन किया। वो एक आसन, एक बार भोजन, एक आदमी ने उसका ऐसा अर्थ निकाल लिया एक आसन, तो एक आसन से बैठे रहे और खाना। तो मेरे एक दोस्त है, नाम नहीं बताऊंगा, तो 2-3 घंटे तक बैठे रहते हैं एक आसन से ही, खाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, और फिर यहां से वहां कोई चीज रखी है ना तो बैठे बैठे सरक के चले जाते हैं। बैठ के खड़े हो जाए तो आसन टूटे, वो बैठे बैठे यहां से वहां खिसक जाने में आसन थोड़ी बिगड़ता है, और फिर वहां से आके लौट के फिर आ जाते हैं। वो बाथरूम में जाके बैठे बैठे पेशाब भी कर जाते हैं, फिर लौट के आ जाते हैं, काम चालू रहता है। वो तो एक आसन है, समझे ना। तो ऊपर ऊपर एक आसन, वहां एक आसन है शयन सोने में, माने में एक करवट से सोते हैं, करवट नहीं बदलते मुनिराज रात्रि में, क्यों? करवट बदले तो वहां अंधेरा है, उजेला तो है नहीं, तो फिर दीपक रखना पड़ा उजेला के लिए। तो दीपक के लिए तेल चाहिए, घी चाहिए, और घी तेल के लिए फिर गाय भैंस चाहिए, माचिस चाहिए, फिर कितना परिग्रह बढ़ता है। अब इरिया समिति पूर्वक वो चलते हैं और करवट बदले, और वहां कोई कीटाणु आ गए हो तो दब जाएंगे ना, मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे, इसलिए वो करवट नहीं बदलते। और करवट बदलना नेचुरल दृष्टि से बहुत आवश्यक है। आप जानते हैं आप कितने करवट बदलते हैं, क्यों बदलते हैं? थक जाते नहीं? थक जाते तो होंगे, ये अपने नाक के दो स्वर है ना, तो अभी दाई नाक ऊपर को रहे और बाई रहे नीचे को, तो शरीर में गर्मी बढ़ती है क्या? वो बाई स्वर ऊपर को रहे और दाई नीचे को रहे तो गर्मी कम होती है शरीर की, टेम्परेचर घटता बढ़ता है। जानते हैं कि नहीं जानते इस बाल जी? तो उससे क्या होता है, वो बैलेंस बनता है। जैसे अपन को बहुत सर्दी लग रही है तो अपन बाएं करवट लेट जाएंगे तो थोड़ी देर में शरीर में गर्मी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। फिर आपको गर्मी लगने लग गई तो आप करवट बदल लेंगे तो वो अपने शरीर की गर्मी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो कम ज्यादा होती बैलेंस बना रहे, इसलिए आप बदल बदल के करवट ले लेकर के सोते हैं, और वो ऑटोमेटिक बिना आपके बेहोशी में ही होता रहता है। आप इस सिद्धांत को नहीं जानते हैं तो अभी प्रकृति से आप करवट बदलते रहते हैं क्या, और आपकी सर्दी गर्मी का बैलेंस बनता रहता है शरीर का। अब मुनिराज को एक ही आसन से क्यों? तो गर्म तो गर्मी, सर्दी तो सर्दी, जो होगा सो होगा। लेकिन वो सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना कि दया के पालन करते हैं ना कि कोई जीव को उनकी तरफ से बाधा ना पहुंच जाए। तो कैसी गजब की बात है, पहले मैंने आपको समझाई भी है कि एक और तो क्या कहते हैं कि सामने कोई बिल्ली चूहे को खा रही हो तो दौड़ के भगाएंगे, भागेंगे नहीं, और एक और इतना सावधानी कि मेरे शरीर को जरा भी हिला के ऐसा करूंगा तो कोई जी मर जाएगा। एक आसन, और कहां भूमाई जमीन पर, ऐसा नहीं कि पलंग पर गए, इस पर इस पर इस पर। वो कहते भाई वो भू तो जमीन पर तो है ना, फिर लकड़ी पर तो सो सकते हैं, फिर भू कहां रहा, वो भू है। वो जमाने में वो जो जंगली लकड़ी होती है ना, जंगल में कोई वृक्ष वगैरह है और पेड़ वगैरह है तो वहां उस पर बैठ गए उठ गए, वो एक अलग बात थी, समझे ना। अब वो लकड़ी के साथ भी तो वही होगा, पार्टियां साथ में लिए फिर, चटाई साथ में लिया, पर मन हर जो चीज है कोई चीज लोगे ना तो उसकी व्यवस्था जुड़ती है ना, चाहे मैं दरी लू चाहे चटाई लू, लेकिन उससे व्यवस्था जुड़ती है ना। वो काठ का तो ये है कि वो अपवित्रता नहीं होती, जो वो होता है ना आपका वो तो चालक चालक होता है, भू चालक क्या होता है, जो क्या एक लोहे का बड़ा डंडा है अग्नि को एक में डाल दो तो जहां वो अग्नि में डाला है वहां तो गर्म होगा ही, लेकिन जहां अग्नि में नहीं डाला है वो दूर ही गर्म हो जाएगा, कुचालक होता ना। लेकिन लकड़ी यदि अग्नि में आगे जल भी रही है तो दूसरा सरा बिल्कुल ठंडा रहता है, यानी उसकी गर्मी वहां नहीं पहुंचती है। तो इसलिए सेफेस्ट मानी जाती है कि हम जहां पलंग पे यदि सो रहे हैं और उसके पाए में आग भी लग जाएगी तो उधर तक हम तक गर्मी नहीं आएगी, समझे ना। तो ऐसा वो वैज्ञानिक बातें हैं, लेकिन मुनराज की तो समस्या ये है कि जो भी परिग्रह रखेंगे वो उसके साथ में उनकी व्यवस्था जुड़ती है, तो उसको लेकर के लेकर चलने वाला चाहिए। जैसे वो प्याल रखते ना तो भी गद्दा तो गांव गांव में मिल जाते हैं, वो प्याल तो फिर वो गांव गांव में मिलता नहीं है, तो वो साथ में चलना पड़ता है ना। मैंने ऐसा अटपटा साधन लोगे तो उसको निरंतर और ज्यादा व्यवस्था उसकी मजबूत हो जाती है, उसकी व्यवस्था और कठिन हो जाती है। तो लिखा भूमाई, मैं तो भैया इसका अर्थ कर रहा हूं, वो भू में वो शामिल हो तो कर लेना, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरी जो समझ में आता है विवेक से वो बात मैं आपको बता रहा हूं कि भूमाई लिखा ना जमीन पर, और पिछली रैन में 12 बजे के पहले तो सोने का कोई सवाल ही नहीं रहा, किसा रात में पढ़ने के तो सुविधा नहीं है, उजेला है नहीं, अब कुछ बात है नहीं, मुंह से बोलते नहीं, किसी से बात करते नहीं है, तो फिर अब क्या करेंगे, रात के कहां जगत रहेंगे, फिर तो अब अकेले में होंगे, कोई तो नींद तो आई जाएगी फिर, क्यों आत्मा का है ना उनका सबसे बड़ा सहारा, आत्मा का ध्यान चिंतन मनन करते रहते हैं, उन्हें नींद आती नहीं, आए नहीं, आना नहीं चाहिए ना। जो तीन कषाय का अभाव हो गया तो निद्रा दशना वर्णी कर्म का भी उतना क्षयोत्सव रहेगा उनका, घंटे आध घंटा सोना उनका काम हो जाए, और फिर अंतर मुंह से ज्यादा तो एक साथ सो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सोते सोते में थोड़ी आत्मा का अनुभव हो जाएगा, सातवां गुणस्थान हो जाएगा, वो तो जागृत अवस्था में चाहिए ना, और जागृत अवस्था में पहले थोड़ा प्रयत्न होना चाहिए ना, उसकी रुचि की विचार का चिंतन की प्रक्रिया चलनी चाहिए क्या नहीं, भले टूट टूट करके नींद 2-3 दफे में कर लें, लेकिन आधी रात के पहले तो है ही नहीं, और पिछली रैन में मैंने वास्तव में तीसरे पहर में चौथे पैर में तो फिर सामायिक का काल हो जाता है क्या। तो मुश्किल से अंतर मुहूर्त दो अंतर मुहूर्त नंगा है, वो भी लगातार नहीं, इतनी नींद आती है, इसे ज्यादा नींद आती नहीं, आनी नहीं चाहिए, आएगी ही नहीं, आती है तो कहीं ना कोई गड़बड़ है, गड़बड़ है मैंने कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है नहीं, क्योंकि नेचुरल जो उनका स्वरूप है तीन कसाय के अभाव रूप से विदाउट टेंशन, ये कसायों का जो टेंशन होता है ना, तो विदाउट टेंशन जो स्थिति है उसमें इससे ज्यादा कभी परिस्थिति ऐसी बनती ही नहीं है, तो ऐसा उनका शयन है। तो कितने 7 गुणों में कितने हो गए, नहाना नहीं, दातुन नहीं करना, और रंच मात्र भी कपड़ा लत्ता नहीं रखना, और पिछली रैन में थोड़ा बहुत एक आसन से जमीन पर सोना, ये 5 हो गए। अब जो 2 रहे ना वे भोजन से संबंधित हैं, उनकी चर्चा अपन पहले बहुत विस्तार से कर सक रहे, खड़े खड़े आहार लेना, दिन में एक बार आहार लेना, अल्पाहार लेना, इसी चर्चा अपन कर चुके हैं ना। इस तरह ये 27 शेष गुण हो गए, तो ये मुनियों के 28 मूल गुण जो माने गए हैं उनकी चर्चा एक तरीके से समाप्त होती है। अब उनकी और जो विशेषताएं हैं उनकी चर्चा अपन कल के व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हैं।